वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। पिछले रविवार हमने इस भजन का एक पद लिया था। यहां पर आप हरे रंग में उसे पढ़ सकते हो। विषय जे प्रीति एबे आछा यामार, सेई मत प्रीति होकर चरणे तोमार। तो हमने सोचा कि ये पूरा भजन इतने सुंदर तरीके से भक्तिनोद ठाकुर ने लिखा है, तो इसके अर्थ को जानते हुए और विशेष रूप से उस पद को हम कंटिन्यू करते हुए आज पहले ये भजन गाएंगे और फिर क्लास लेंगे। पहले इसका अर्थ जान लें।
हे भगवंता, हे प्रभु, आपल्या चरण कमळी माझी एकच विनम्र प्रार्थना आहे। मला देहसुख नको, विद्या धन तसेच अनुयायीगण देखील नको। मला स्वर्गवास नको वा या भौतिक अस्तित्वातून मुक्ती नको। योग सिद्धी प्राप्त करण्यासाठीही मी आपल्याकडे प्रार्थना करीत नाही। माझ्या पूर्व जन्मातील पाप पुण्याप्रमाणे कोणताही जन्म मिळो, माझी आपल्याकडे एकच प्रार्थना आहे की मी जन्म जन्मांतर निरंतरपणे आपल्या पवित्र नामांचे कीर्तन करीत राहीन। हे भगवंता, हीच ती माझी एक इच्छा आहे जी मी आपल्या चरणी अर्पण करीत आहे। आपल्या प्रति अहेतुकी भक्ती निरंतर माझ्या हृदयात जागृत राहो। विषय वासनांप्रती मला जितकी ओढ आहे, तितकीच ओढ मला आपल्या चरणकमळांप्रती निर्माण व्हावी। संपद विपद अशा कोणत्याही अवस्थेत माझे आपल्याप्रती असलेले प्रेम अविचलित राहावे। आपल्या पवित्र नामाच्या शक्तीने आणि प्रभावाने माझ्या आपल्याप्रती असलेल्या प्रेमात वृद्धी हो। स्वर्ग वा नरक, पशु वा पक्षी कोठेही असलो तरी आपल्याप्रती भक्ती या भक्तिविनोदांच्या हृदयात राहो।
प्रभु तव पदयुगे मोर निवेदा, नहीं मागी देह सुख विद्या धन जान। प्रभु तव पदयुगे मोर निवेदन, नाहि मागि देह सुख विद्या धन जान। नाहि मागी स्वर्ग र मोक्ष नाहि मागी, नाहि मागी स्वर्ग र मोक्ष नाहि मागी। ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूति लागी, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाए। प्रभु प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन नहीं मागी देह सुख विद्या धन जान ए मात्र आशा मम तोमार चरणे मात्र आशा मम तोमार चरणे अहै तुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे विषय जे प्रीति बे आचाय विषय जे प्रीति बे आचाय से मत प्रीति होक चरणे तुमार प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन नहीं मागी देह सुख विद्या धन जान विपदे संपदे ताहा ठाकुर समभावे विपदे संपदे ताहा ठाकुर समभावे दिने दिने वृद्धि होक नामेर प्रभावे पक्षु पक्षी है ठाकी स्वर्गे वानिराय पशु पक्षी है ठाकी स्वर्गे वानिराय तव भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन नहीं मागी देह सुख विद्या धन जान विषय जे प्रीति बे आछाए आमार विषय जे प्रीति बे आछाय आमार से मत प्रीति होक चरण तोमार ओ से मत प्रीति होक चरण प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन नहीं मागी देह सुख विद्या धन जान जय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जो पद हमने लिया पिछले रविवार को, विषये जे प्रीति एबे आच्छाया मार, सही मत प्रीति होक चरणे तो मार। जो प्रीति मैं अपने आप में रखता हूं, जो आनंद मैं अपने आप में अनुभव करता हूं, जितना ध्यान मैं अपने आप पर देता हूं, जितनी चिंता मैं अपने विषय में करता हूं, ये सब कुछ यदि मैं भगवान के विषय में करने लग जाऊं तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित है उसी में। तो हमने श्रील प्रभुपाद का एक उदाहरण लिया था पिछले रविवार को कि यदि हम बहुत जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन करते रहें परंतु यदि ठीक प्रकार से श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे तो वो किसके समान है, जैसे कोई धुएं के बलबूते पर खिचड़ी पका रहा है। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, इट इज एज गुड एज समवन ट्राइंग टू कुक विद स्मोक। बहु जन्म कोरे यदि श्रवण कीर्तन, तबुतन पाय कृष्ण पदे प्रेम धन। बहु जन्म कोरे यदि श्रवण कीर्तन, बहुत बहुत जन्मों तक भी यदि हमने श्रवण कीर्तन किया, तबु तन पाय कृष्ण पदे प्रेम धन, फिर भी कृष्ण पद या कृष्ण प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा यदि हम गलत तरीके से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। और फिर हमने ये जो पद लिया जिसके अंदर बहुत ही व्यावहारिक तरीके से भक्तिनोद ठाकुर प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई ऊंचे महाजनों का उदाहरण नहीं दे रहे यहां, ये नहीं कह रहे कि हमारी भक्ति गोपियों की तरह होनी चाहिए, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ऐसे महाजनों की तरह हमारी भक्ति होनी चाहिए, ये भी नहीं बोल रहे। केवल भक्ति विनोद ठाकुर इतना कह रहे हैं कि जितनी भक्ति हम अपने आप में रखते हैं, कितने बड़े भक्त हैं हम अपने आप के, बस केवल उतनी भक्ति हम भगवान की कर लें तो उसी में हमारा उद्धार निश्चित है। और हमने पिछली बार मुझसे थोड़ी गलती हो गई, वो 10 पॉइंट नहीं 12 पॉइंट है, तो उसमें से हमने 4 पॉइंट लिए थे कि ये 12 मुद्दे जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं ये वो मुद्दे हैं कि 12 तरीके से हम स्वयं की आराधना कैसे करते हैं, 12 तरीके से हम अपनी पूजा अर्चना कैसे करते हैं, और बस हमें इन 12 तरीके से श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की पूजा अर्चना करनी है, बस हमारी ड्यूटी हटाकर भगवान की ड्यूटी रखनी है, हमारा अर्च्य विग्रह निकालकर भगवान श्री राधा मदन गोपाल का अर्च्य विग्रह यहां पर स्थापित करना। तो सबसे पहला मुद्दा हमने लिया था कि कैसे हम अपने विषय में कितने जागरूक रहते हैं, हाउ आर वी कॉन्शियस ऑलवेज अबाउट आवरसेल्व्स, हर क्षण बचपन से लेके अब तक, अब से लेके मरण शैया तक हम कितना अपने विषय में कॉन्शियस रहते हैं कि मैं, मेरा शरीर, मेरे इंद्रियां, मेरा मन, मेरी इच्छाएं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता। यदि उतना ही कॉन्शियस हम भगवान के विषय में हो जाए जितना हम 24 घंटे में अपने विषय में सोचते हैं, यदि उतना ही समय हम भगवान के विषय में सोचें तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारी प्रीति जागृत हो जाएगी। फिर हमने दूसरा मुद्दा लिया था कि जितना हम हमारे विषय में सोचते हैं पूरे दिन भर और पूरे जीवन भर, उसी के अनुसार हम हमारे ऊपर खर्चा भी इतना ही करते हैं, है कि नहीं। बचपन से लेके अब तक हमने इस मृत शरीर के ऊपर कितना खर्चा कर दिया। यदि हम बिल उसका फाड़ें कि हमने कितने पैसों की क्रीम लगा ली शरीर के ऊपर, कितने पैसों के पाउडर लगा ली, कितने पैसों की दवाइयां इस शरीर को खिलाई हैं, कितने पैसों के खाद्य पदार्थ इस शरीर को खिलाए हैं, कितने पैसों के कपड़े इस शरीर पर पहनाए हैं हमने, कोई अंत नहीं है इस लिस्ट का। इतना खर्चा इस शरीर के ऊपर, और फिर भी ये शरीर हर रोज दुर्गंधित रहता है, हर रोज इसको सुबह साफ करना पड़ता है, फिर से इसको नहलाना धुलाना पड़ता है, फिर से नए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े। एक दिन भी यदि मंजन नहीं करें तो बदबू मारने लगता है शरीर। कई बार लोगों को तो 2-3 बार मंजन करना पड़ता है। तो कितने टूथपेस्ट घिस लिए होंगे हमने दांतों के ऊपर। सो हाउ मच वी स्पेंड ऑन आवरसेल्व्स, इफ ओनली वी थिंक ऑफ स्पेंडिंग ऑन कृष्णा, आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बिगिन्स थ्रू दैट। फिर तीसरा मुद्दा, किसे याद है? प्लानिंग एंड सिक्योरिटी। हम हमारे विषय में कितनी प्लानिंग करते हैं कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं यहां जाऊंगा, आज मैं ये कपड़े पहनूंगा, आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं इससे बात करूंगा, आज इतने पैसे कमाऊंगा, आज इतना सोऊंगा। ये तो एक दिन की प्लानिंग हो गई। फिर हफ्ते भर की प्लानिंग, लोगों कैलेंडर बना के रखते हैं, प्लानिंग कैलेंडर बना के, प्लानर बोलते हैं उसको, प्लानर बना के रखते हैं कि हफ्ते भर की प्लानिंग, महीने भर की प्लानिंग, हर चीज का इंश्योरेंस, कार का, लाइफ का, घर का, हर चीज का इंश्योरेंस। एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड सिक्योर्ड एंड इंश्योर्ड। तो हमारा प्रश्न ये था, या हम ये कहें भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हाउ मच हैव वी प्लान्ड एंड सिक्योर्ड अवर साधना। हमारे रोज के जप के विषय में हम कितना प्लानिंग करते हैं, जितना प्लान, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जितना प्लानिंग हम सोने के लिए करते हैं उतना प्लानिंग यदि हम जप के लिए कर लें, जितना प्लानिंग हम अपने संरक्षण के लिए करते हैं उतना प्लानिंग यदि हम हमारे सत्संग के लिए करें, हमारी साधना के लिए करें, श्रवण कीर्तन के लिए करें, तो हमारा उद्धार निश्चित है। और चौथा मुद्दा कि प्लानिंग करने के बावजूद हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं, क्राइसिस, तो उन विपदाओं में, उन विपत्तियों में हम किसकी शरण ग्रहण करते हैं? क्या इंश्योरेंस कंपनी की, क्या गवर्नमेंट की, इस शरीर की, हमारे पैसों की, क्या उसे हम संपत्ति मानते हैं? हमने श्लोक लिया था, महाविपत्तौ संसारे यस्मरेत मधुसूदन, विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी संपत्ति है उनकी विपत्ति, जैसे कुंती महारानी, उनके जीवन में एकमात्र संपत्ति उनकी क्या थी? उनके जीवन की विपदाएं, उनके जीवन की विपत्तियां। इसलिए विपत्ति तस्य संपत्ति, परंतु कब वो संपत्ति बनती है? जब विपत्ति में भक्त यह स्मरेत मधुसूदन, कि भगवान श्री मधुसूदन का स्मरण करे उस विपत्ति में, तब नहीं तो नहीं। तो ये चौथा मुद्दा था। अब पांचवा मुद्दा, हाउ मच वी लाइक दोज हु लाइक अस। कितना हम उनको पसंद करते हैं जो हमको पसंद करते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सहानुभूति हमारी उनके प्रति होती है जो हर समय हमारा गुणगान करें, जो हमें पसंद करते रहें, तो हम उनकी संगति में ज्यादा रहते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या हमें भक्त इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं, या मुझे भक्त इसलिए पसंद हैं कि वो भक्त भगवान कृष्ण को पसंद करते हैं। डू आई लाइक डिवोटीज बिकॉज दोज डिवोटीज लाइक मी, और डू आई लाइक डिवोटीज बिकॉज दोज डिवोटीज लाइक कृष्णा। और इसमें एक और सब पॉइंट ये है, डू आई लाइक दोज डिवोटीज हु डोंट जस्ट लाइक कृष्णा बट आर ऑल्सो लाइक्ड बाय कृष्णा। राधानाथ महाराज एक बार हमारे CSV मीटिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा वो कह रहे थे। कई बार जब भक्ति में बहुत साल बीत जाते हैं तो शुरुआत में सारे भक्त वैकुंठवासी लगते हैं हमें, फिर कुछ वर्ष बाद हम प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गवासी हो जाए। पहले वैकुंठवासी लगते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गवासी हो जाए। तो राधानाथ महाराज वो देख रहे थे कि कुछ वरिष्ठ भक्तों के बीच में मतभेद होता है, वरिष्ठ भक्तों के बीच में मतभेद, मेरा मत ये है, दूसरा बोलता है मेरा मत ये है, और दोनों के मत में इतना भेद है कि जमीन आसमान भी छोटी पड़ जाए। तो महाराज ने एक बहुत सुंदर पॉइंट कहा। महाराज बोल रहे थे कि एक लेवल होता है जब मतभेद होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फिर उस मतभेद को लेकर हम इतने ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं जिससे हमारी भक्ति का कोई लेना देना नहीं है उस मत से, या तो उसके मत से, उस भक्त के मत से, या हमारे मत से, हमारे भक्ति की प्रगति का कोई लेना देना नहीं होता। तो होता क्या है कि अहंकार हमारे अंदर इतना प्रबल होता है कि मैंने यदि कुछ मत प्रस्तुत किया तो वो मत क्यों नहीं माना गया, इसके बदले उसका क्यों माना गया मत। तो यदि मान भी लिया गया हमारा मत सब लोगों ने, पूरी दुनिया ने, तो भी हम भगवत धाम नहीं जाने वाले उसके बलबूते पे, परंतु हमें वो हमारा मत इतना मूल्यवान लगता है और दूसरे का मत जिसको हम पसंद नहीं करते उसका मत हमें इतना नगण्य लगता है कि महाराज कहे कि फिर दूसरा लेवल आ जाता है। दूसरा लेवल क्या होता है? वी स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन। First we dislike his opinion, then we dislike him, then we start hating him. परंतु जो बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक मुद्दा महाराज ने कहा इसमें वो ये था, ध्यान से सुनिए महाराज, बहुत सुंदर कहे ये वाक्य. यू शुड नो दैट द थिंग विच यू हेट अबाउट दैट पर्सन द मोस्ट, द थिंग विच यू हेट अबाउट दैट पर्सन द मोस्ट, कृष्णा माइट लाइक दैट द मोस्ट. हरे कृष्णा, जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की. रिपीट करें, महाराज कहे द थिंग विच यू हेट अबाउट द अदर डिवोटी द मोस्ट, किसी दूसरे भक्त की कोई एक बात आपको घृणास्पद लगती है, वही बात जो आपको घृणास्पद लगती है, जिससे आप घृणा करते हो सकता है कि श्री श्री राधा मदन गोपाल को सबसे अच्छी लगती हो वो बात उस व्यक्ति की. लो अब क्या कर लोगे. वेलकम टू कृष्ण भक्ति क्लब. और होता है, हमने देखा है वरिष्ठ भक्तों के बीच में, परंतु हमने ये देखा है कि वरिष्ठ भक्तों के बीच में मतभेद होता है, परंतु उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी होती है कि वो जो मतभेद है वो उनके वैष्णव रिलेशनशिप को कम नहीं कर सकते. जैसे जब मैं राधानाथ महाराज की सेवा में था, उनका पर्सनल सर्वेंट, तो एक बार जयद्वेत महाराज और श्रीधर महाराज वो संडे फीस्ट क्लास के लिए आए और दोनों के बहुत से मुद्दों पर मतभेद हुआ करते थे, बहुत से डिफरेंसेस थे शारीरिक स्तर पर भी उनके. जयद्वेत महाराज एकदम पतले से, तो सुबह की क्लास हुई उसके पश्चात फिर मैं ब्रेकफास्ट सर्विंग कर रहा था, तो सारे सन्यासी बैठे हुए थे और भी सन्यासी आए हुए थे, फिर राधानाथ महाराज, श्रीधर महाराज, जयद्वेत महाराज, और श्रीधर महाराज और जयद्वेत महाराज वो दोनों अगल बगल में बैठे थे और मैं पोहा सर्विंग कर रहा था. तो जब श्रीधर महाराज की प्लेट में मैं पोहा डालने गया तो उन्होंने कहा ओनली पोटेटोज, मुझे केवल आलू ज्यादा डालो. तो मैंने चुन के उसमें से आलू ज्यादा डाले. मैंने कहा अभी ये पूछ ले तो इसमें आलू कम हो रहे हैं भी, और इन दोनों के बीच में मुझे पता था थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है. तो जब जयदेव महाराज जो बैठे हुए थे प्रतीक्षा में थे, उनकी प्लेट खाली थी, तो जब उनके सामने मैं गया तो उन्होंने थोड़ा जोर से कहा नो पोटेटोज. परंतु दोनों, हालांकि अब होता क्या है कि नौसिखिया भक्त जो होते हैं वो आलू को लेके लड़ मरते हैं, हमारी स्थिति क्या है, इतना आलू खाता है मुझे जो पसंद नहीं इसको इतना कैसे पसंद है, और जो मुझे ना पसंद है वो इसे इतना कैसे पसंद है. तो हम लोग नौसिखिया भक्त क्या होते हैं, उसको लेके, एक आलू को लेके हम भालू बन जाते हैं दूसरे के लिए, लड़ने मरने के लिए उतारू हो जाते हैं. परंतु जो प्रगत भक्त होते हैं वो ये सारी चीजों को बिल्कुल कोई मायना नहीं देते, कोई मायना उनका नहीं इसका, क्योंकि उनकी पसंद नापसंद वो एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर है। जैसे बंबई में एक बार मैं कुछ सेलिब्रिटीज का एक प्रोग्राम कर रहा था, अभिनेता अभिनेत्रियां, तो कुछ उनको इस्कॉन से लेना देना नहीं, परंतु कार्यक्रम के लिए बुलाया था। कार्यक्रम क्या था कि उनका गेट टुगेदर था, उसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन के तौर पे मुझे बुलाया था। नहीं, मजाक कर रहा हूं, उनको कुछ सुनना भी था कि चलो हम लोग यहां वहां के सब प्रजल बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, थोड़ा साधु महाराज से कुछ सुनते हैं। तो हुआ क्या कि अब उन्होंने सब कुछ भोजन पानी इत्यादि डिनर वगैरह अरेंज किया था, आई वॉज जस्ट अ गेस्ट इन्वाइटेड। तो एक अभिनेत्री वो अपना डिनर प्लेट लेकर वो मुझसे कुछ पूछने लगी, तो मैं तो वहां ले नहीं रहा था क्योंकि वो सब कांदा लहसुन वगैरह था उसमें। तो आकर मुझसे पूछती है, आई हर्ड यू डोंट ईट ओनियन गार्लिक। मैंने कहा या आई डोंट ईट। अब उसके हाथ में पूरा वो सलाड में कांदा वांदा कटा हुआ सब था, और वो मुझे पूछती, यू डोंट ईट ओनियन गार्लिक आई हर्ड। मैंने कहा या आई डोंट ईट। व्हाई यू डोंट लाइक? अब देखिए, आप थोड़ी इस स्थिति को इमेजिन कीजिए कि उसके हाथ में वो है जो खा रही है, और अगर उसके मुंह पे मैं कह दूं, नो आई डिसलाइक व्हाट यू आर ईटिंग, ऐसे कर दूं, तो अब वो बहुत बड़ी एक अभिनेत्री, नाम नहीं बताएंगे, नाम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि फिर आप उसकी पिक्चर इमेजिन करने लग जाओगे, तो भागवत क्लास चल रही है। तो जब उसने मुझे पूछा, तो अब ये स्थिति थोड़ी विकट परिस्थिति थी कि इसको कैसे उत्तर दिया जाए। तो उसने जब पूछा, यू डोंट लाइक ओनियन गार्लिक, मैंने कहा या आई लाइक ओनियन गार्लिक, सो व्हाई यू नॉट हैविंग? तो मैंने उनसे कहा, द पर्सन हु हैज आस्क्ड मी नॉट टू ईट ओनियन गार्लिक, आई लाइक हिम मोर देन ओनियन गार्लिक। तो तुरंत उन्होंने पूछा, ओ हु इज दैट पर्सन, दैट पर्सन मस्ट बी वेरी स्पेशल, लाइक यस ही इज राधानाथ स्वामी माई स्पिरिचुअल मास्टर। और इसके चलते उनको मैं जर्नी होम महाराज की बुक भी दे पाया। तो कई बार मैं फिर उसके विषय में सोच रहा था कि क्या मैंने उसको झूठ बोला? नहीं। कई बार हमारी स्थिति ऐसी है कि अब 15 साल बाद भी हमें प्याज लहसुन अच्छा लगता है, कईयों को चाय कॉफी अभी भी याद आती है ये मौसम में। तो क्यों हम छोड़े हुए हैं? Why? Because we like प्रभुपाद एंड अवर गुरु महाराज मोर देन टी एंड कॉफी। वी लाइक प्रभुपाद एंड अवर गुरु महाराज मोर देन ओनियन गार्लिक। And that is called love. तो यही मुद्दा है यहां पे। how much do we like those devotees who like Shri Shri Radha Madan Gopal? And how much do we like those devotees who are liked by Shri Shri Radha Madan Gopal? तो इसके विषय में मैं दो मुद्दे सोच रहा था. एक है हमारी भक्ति में उदार हृदय होना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉड हार्टेडनेस. एक तरफ है ब्रॉड हार्टेडनेस और दूसरी तरफ है मैच्योरिटी. देखो, ब्रॉड हार्टेडनेस और मैच्योरिटी, कई बार अगर उसको हम बैलेंस नहीं करें या उसको ठीक से समझे नहीं, तो हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में हम उपद्रव पैदा कर सकते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रॉड हार्टेडनेस? ब्रॉड हार्टेडनेस मीन्स टू अकोमोडेट ऑल वराइटीज ऑफ डिवोटीज इन आवर लाइफ, टू अकोमोडेट देम, ऑल वराइटीज ऑफ डिवोटीज. डिवोटीज के जितने स्पीशीज हैं, वो सारे डिवोटी के स्पीशीज को अकोमोडेट करना, इसको बोलते हैं ब्रॉड हार्टेडनेस. और आपको इस्कॉन में, भक्तों के कम्युनिटी में, बहुत वैरायटी मिलेगी डिवोटीज की, अलग अलग. कई डिवोटीज हैं जो एकदम सत्व गुण में भक्ति कर रहे हैं, कई डिवोटीज हैं जो रजोगुण में, हर चीज उनकी जब भी होता है तो लगता है कि कलयुग का युग धर्म है. तो बहुत से वैरायटीज. सो ब्रॉड हार्टेडनेस मींस टू अकोमोडेट इन योर कॉन्शियसनेस ऑल वैरायटीज ऑफ डिवोटीज. नाउ व्हाट इज मैच्योरिटी? केवल ब्रॉड हार्टेडनेस अगर हम रखेंगे तो फट जाएगा हृदय, क्योंकि इतनी वैरायटी है. सब लोग अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे और बहुत जगह ले लेंगे फिर. सो ब्रॉड हार्टेडनेस इज दैट. मैच्योरिटी मींस टू नो व्हेन टू अकोमोडेट एंड हाउ टू अकोमोडेट. दैट इज मैच्योरिटी, कि किस भक्त को कब अकोमोडेट करना है और कैसे अकोमोडेट करना है. कई बार अकोमोडेशन भाड़े पर देने से वो भक्त प्रगति करेगा हमारे हृदय में उसको. सो दिस इज द बैलेंस बिटवीन ब्रॉड हार्टेडनेस एंड मैच्योरिटी. जैसे कि हाल ही में मैं जब यूके जाने से पहले मैं जब बंबई में था, तो वहां पर कई डिवोटीज वो मेरा कॉन्टैक्ट फोन का नंबर मांग रहे थे और वो अपना नंबर भी दे रहे थे. तो मैं उनका नंबर सेव कर रहा था, नाम लेकर सबका नंबर सेव कर रहा था. तो एक भक्त बगल में खड़े हुए मुझे पूछे, आप सबका नंबर सेव करते हो? मैंने कहा हाँ. क्यों, सबका नंबर क्यों सेव करते हो? तो मैंने उनको कहा, आई सेव एवरीवन्स नंबर सो दैट आई नो हूज नंबर टू पिक, हूज नंबर नॉट टू पिक. यदि सेव नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि उसको उठाना है कि नहीं उठाना है. सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस बिटवीन ब्रॉड हार्टेडनेस एंड मैच्योरिटी, कि आपके भक्ति के फोन बुक में सब कॉन्टैक्ट्स रखो, परंतु किसका फोन उठाना है और किसका फोन नहीं उठाना है, दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी. कन्फर्म्ड. तो याद रहेगा सेलफोन के फोन बुक का एग्जाम्पल. ब्रॉड माइंडेड मीन्स कीप सेविंग एवरीवन्स कॉन्टैक्ट. मैच्योरिटी मीन्स टू नो हूज फोन टू पिकअप, हूज फोन नॉट टू पिकअप. तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, हाउ मच डू वी लाइक दोज हु लाइक कृष्णा. जैसे कि गोवर्धन लीला में इंद्रदेव, उनसे अपराध हुआ और अपराध के पश्चात फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वो अपना चेहरा दिखा सकें. तो उन्होंने क्या किया, सुरभि, सुरभि गाय को सामने लिया. क्यों सुरभि गाय को सामने लिया? क्योंकि इंद्रदेव जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण सुरभि गाय को पसंद करते हैं, और यदि मैं सुरभि गाय के पीछे आगे पीछे यहां वहां कहीं दिख जाऊं तो सुरभि गाय को देखने के पश्चात जो उनका हृदय पिघल जाएगा, तो पिघला हुआ हृदय मुझ पर भी कृपा करेगा. यह उद्देश्य था इंद्रदेव का, और यह उद्देश्य हम सब का है. हम सब इंद्रदेव की कैटेगरी में, कितने अपराध कर चुके हैं भगवान श्री गोविंद के प्रति, और हम सबको हमारे जीवन में हमारी सुरभि गाय ढूंढनी है कि हम सब के जीवन में कौन सी वो सुरभि गाय है जिसको लेकर हम मदन गोपाल जी के सामने जाएं. अकेले जाएंगे तो भगवान देखेंगे ही नहीं हमारी तरफ. इसलिए सबसे पहले हम राधा रानी, उससे पहले गुरु परंपरा, हमारे षड गोस्वामी, इन सब की ओर याचना करते हैं, और इनको सामने रखते हुए फिर हम. इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब भी जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे, आपको पता है जगन्नाथ जी का दर्शन चैतन्य महाप्रभु कहां से किया करते थे? ऑल्टर में अंदर जाकर नहीं, एकदम ऑल्टर के सामने खड़े होकर भी नहीं, पूरे गर्भगृह से बाहर, वो पूरे ऑल्टर के एरिया से बाहर दूर गरुड़ स्तंभ जहां पर है, गरुड़ जी जहां पर है, तो गरुड़ जी के निकट खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे. क्यों? चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात स्वयं जगन्नाथ जी हैं, और जो कि सबसे बड़े कृष्ण भक्त बनकर आए इस कलयुग में, राधा रानी का भाव लेकर वो गरुड़ जी के सानिध्य में खड़े होकर दर्शन लिया करते थे जगन्नाथ जी का. इसलिए वो ये कहते थे कि जगन्नाथ जी मेरी ओर तो नहीं देखेंगे क्योंकि मैं भक्त ही नहीं हूं, परंतु गरुड़ जी भक्त है, और गरुड़ जी की ओर जब जगन्नाथ जी देखेंगे तो मेरे ऊपर भी नजर गिर सकती है उनकी, क्योंकि मैं वहीं पर बगल में खड़ा हूं. देखिए ये चैतन्य महाप्रभु का भाव. तो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में हमें तुलसी महारानी की सेवा, गाय की सेवा, ये सब कुछ क्यों दिया है? क्या है इसका उद्देश्य? क्योंकि तुलसी महारानी वो कौन है? कृष्ण प्रिया. उनका एक नाम क्या है? कृष्ण प्रिया, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं. गाय की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि गाय भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है. अगर भगवान श्री कृष्ण को और भी कोई प्रिय होता तो हम उसकी भी पूजा करते. अगर भगवान श्री कृष्ण को भैंस प्रिय होते तो हम भैंसों की सेवा करते. हमें किससे अर्थ है, हमें किससे मतलब है? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता किस में मिलती है? भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अच्छा लगता है, इसलिए हम भगवान को मोर पंख लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अच्छी लगती है तो हम भगवान को माखन मिश्री अर्पित करते हैं। तो ये सब उदाहरण क्या है? ये सब उदाहरण यही बता रहे हैं, यही दर्शा रहे हैं। इन आवर लाइफ इफ वी स्टार्ट लाइकिंग दोज थिंग्स एंड दोज पीपल हु आर लाइक्ड बाय कृष्णा एंड हु लाइक कृष्णा। राधा रानी तो इस हद तक कहती हैं, राधा रानी कहती हैं कि यदि कोई अन्य गोपी चंद्रावली इत्यादि, यदि वो मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा प्रसन्नता दे रही है तो मैं उनकी दासी बनने के लिए तैयार हूं। राधा रानी सिंह, इफ सम अदर गोपी इज गिविंग मोर प्लेजर टू कृष्णा, आई एम रेडी टू बिकम द सर्वेंट, मेड सर्वेंट ऑफ दैट गोपी। इसलिए तीसरे स्कंद में श्रीमद् भागवत के बहुत सुंदर वर्णन है आध्यात्मिक संसार का, और उस वर्णन में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आध्यात्मिक संसार में भक्तों की चेतना क्या होती है। उदाहरण देते हैं कि जब आध्यात्मिक संसार में जो पक्षी हैं भक्त के रूप में, जब वो भगवान श्री कृष्ण को सुबह सुबह अपनी चहचहाट से आनंदित करते हैं पक्षी, परंतु जब उनको दिख जाता है कि भगवान को हमारी आवाज से ज्यादा एक भंवरे की आवाज सुनना अच्छा लग रहा है तो सब चुप हो जाते हैं। जब वो जैसे ही देखते हैं कि अरे हम लोग हमारी जो चहचहाट कर रहे हैं परंतु हम देख रहे हैं कि इनको भंवरे की आवाज ज्यादा सुनना पसंद आ रहा है तो सब कहते चुप हो जाओ, भंवरे को बोलने दो। कितनी बार हमारे साथ होता है, हम हर समय भंवरा बनना चाहते हैं, बाकी लोग चुप हो जाओ मैं लीड करूंगा, क्योंकि भगवान मेरे लीड करने पर मुस्कुरा रहे हैं, देखो सब लोग ध्यान से। परंतु वैकुंठ का कॉन्शियसनेस क्या है कि यदि एक भंवरा आनंद दे रहा है तो बाकी सब चुप हो जाओ, भगवान को भंवरे की आवाज सुनने दो। जितने सारे पेड़ पौधे हैं वो तुलसी महारानी को आगे करते हैं कि ये भगवान, जितने सारे पेड़ पौधे हैं उनमें से तुलसी सबसे प्रिय भगवान। तो इसलिए ये जो पांचवा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन सब को पसंद करें अपने जीवन में जिनको भगवान पसंद करते हैं और जो भगवान को पसंद करते हैं। कई बार होता क्या है कि हमारी कॉन्शियसनेस होती है कि ये मेरा काउंसिली, इसका मैं काउंसलर, ये मेरा काउंसिली, और ये मेरा काउंसिली क्यों? क्योंकि ये मुझे पसंद है, और ये मुझे पसंद क्यों है? क्योंकि ये मुझे पसंद करता है। इसलिए मुझे इसका संग करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों इसका संग करना अच्छा लगता है? क्योंकि ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद करता है। अच्छा, इसमें एक और मुद्दा मैं सोच रहा था, सब पॉइंट इसका सब पॉइंट ये है, हाउ मच वी लाइक दोज Who dislike whom we dislike? मैं रिपीट करता हूं अगर समझ में नहीं आया आपको। ये कलयुग की विशेषता है, बहुत हॉलमार्क ऑफ कलयुग है। We like those people who dislike whom we also dislike। जैसे कहते हैं ना, I am friends with you because we have common enemies. Israel hates Pakistan. India hates Pakistan. So Israel and India are good friends. समझ में आ रहा है आपको? तो कई बार भक्तों के बीच में भी ऐसे हो जाता है कि अब देखो हमारी मैत्री कलयुग में कितनी सुपरफिशियल रहती है कि दो भक्त प्रसाद के लिए बैठे हुए हैं और करेले की सब्जी बनी है, तो एक कहता है आई हेट करेला, दूसरा बोलता आई ऑल्सो हेट करेला, रियली गिव मी योर नंबर. मुझे आपसे दोस्ती क्यों करनी है? क्योंकि मुझे करेला पसंद नहीं, आपको भी करेला पसंद नहीं. वाह क्या महफिल जमेगी हमारी. अभी तो मैंने खाली करेले का उदाहरण दिया. कई बार कई भक्त हमें करेले से भी ज्यादा कड़वे लगते हैं. आई हेट दैट डिवोटी, इवन आई हेट दैट डिवोटी. वाह प्रभु यू आर माय बेस्ट फ्रेंड. व्हाई? बिकॉज वी बोथ हेट द सेम डिवोटी. तो इसको बोलते हैं कॉमन एनिमी. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मैत्री वैष्णवों के साथ किस फाउंडेशन पर बेस्ड है. तो फिर से इस मुद्दे का जो मेन पॉइंट है वो समझ लें, दैट वी शुड लाइक डिवोटीज हु लाइक कृष्णा, नॉट जस्ट बिकॉज दे लाइक मी. वी शुड लाइक अदर फेलो डिवोटीज बिकॉज दे आर लाइक्ड बाय कृष्णा. अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, हाउ मच आर वी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड फॉर आवरसेल्व्स. स्वयं के विषय में हम कितने शिष्टता बरतते हैं, कितना डिसिप्लिन और कितनी पंक्चुअलिटी खुद के विषय में. मैं उदाहरण दे रहा था कि कुछ वर्ष पहले मैं एक जगह पर कार्यक्रम करता था, तो मैं कार्यक्रम सुबह के समय शुरू किया था और ये ऐसी जगह थी कि सुबह के समय भूल जाओ, वो भी उनका छुट्टी का दिन. तो मुझे लगा कि सुबह की मंगल आरती में लोग आएंगे, जप होगा एक साथ, फिर क्लास होगी, तो सुबह थोड़ा सत्वगुण में ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. तो कईयों का सजेशन था कि प्रभु जी मंगल आरती 10 बजे शुरू करें. वो तो शुक्र मनाओ कि 10 AM कहा. और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहां का इवनिंग प्रोग्राम उन्होंने सजेस्ट किया था और मैंने एक बार उसको स्वीकार भी कर लिया कि कम से कम ठीक है देखते हैं, प्रचार के लिए ये भी सैक्रिफाइस करते हैं. तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि प्रभु जी आप इवनिंग का प्रोग्राम बहुत जल्दी रखते हो. मैंने पूछा कितनी जल्दी, मतलब 8 बजे तो शुरू कर रहे हैं शाम को, ये जल्दी हो रहे हैं आप, बहुत जल्दी है, तो कितने बजे शुरू करें? आप 10 बजे राधा माधव शुरू करो. तो मैंने कहा ठीक है आजमा के देखते हैं. तो 10 बजे मैंने राधा माधव शुरू किया, रात के पूरा पैक, लोग अच्छी से राधा माधव पूरा गा रहे हैं. और फिर जब उनकी महफिल जमी वो 10:30-11 बजे फिर उनकी शाम जवान हुई. तो वो एक ऐसी क्लास थी जिसमें ऑडियंस जागरूक थी, स्पीकर सो रहा था. उल्टा हो गया, मुझे नींद आ रही थी और ऑडियंस एकदम जागरूक. प्रभु जी सो रहे हैं आज. तो वहां पर जब ये कहा गया कि मंगल आरती सुबह 10 बजे क्यों नहीं, तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि आप बंबई कैसे जाते हो, जब भी बंबई जाते हो तो कईयों ने कहा कि हम ट्रेन से जाते हैं, कौन सी ट्रेन बंबई के लिए आप पकड़ते हो, पंचवटी, कितने बजे है पंचवटी, सुबह 7 बजे, तो 7 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए कम से कम 6:30 बजे तो उठते होंगे, लेट कम लेट 6:30 बजे मंजन इत्यादि करने के लिए। तो जब पंचवटी पकड़नी है तो हम इंडियन रेलवेज को जाके नहीं कहते अरे 10 बजे करो ना ये ट्रेन को, हाँ? मैंने देखा जयपुर में मेरी एक फ्लाइट थी सुबह 3:30 की, और सुबह 3:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट में बंबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए सब नहा धो के तैयार एकदम डॉट ऑन टाइम। वही मैं बोल रहा था कि अगर इनको मंगल आरती के लिए बुलाएं 5 बजे तो सब उबासी लेने लगते हैं इतनी जल्दी, लेकिन जब खुद को कोई फ्लाइट पकड़नी होती है या सुबह की पंचवटी पकड़नी होती है तो यहां की भाषा में क्या कहते हैं, झक मारकर हम उठते हैं, है ना, सॉरी ये फ्रेज बोलना पड़ा मुझे थोड़ा इंपैक्ट लाने के लिए। परंतु सुबह के 6 बजे के जप में या 5 बजे की मंगल आरती में तब नानी याद आती है इतनी जल्दी। तो खुद के विषय में हम कितने डिसिप्लिन रहते हैं। मुझे बताया गया था कि यहां पे जब रामदेव बाबा आए थे तो रामदेव बाबा का योगा का शिविर सुबह 5 बजे और पंडाल भरा हुआ खचाखच सुबह 5 बजे। तो हम देखते हैं कि जहां पर हम काम करते हैं, जैसे मैं जब एयरफोर्स में था तो वहां पर इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, हमारे सुबह का हेल्थ रन 5 बजे शुरू होता था, वहां से शुरू होता हेल्थ रन पहले और उसके पश्चात फिर परेड और इत्यादि बहुत कुछ होता था ट्रेनिंग में, परंतु सबसे पहले शुरुआत हेल्थ रन से। तो कई हमारे वो इसमें हॉस्टल में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तो वो लोग रात को ही जूते पहन के सोते थे, वो पीटी शूज पहन के रात को सोएंगे और 5 बजे रिपोर्टिंग है तो चलने वॉकिंग डिस्टेंस कुछ 5 मिनट का था तो एग्जैक्टली 4:50 को उठते थे और कई बार तो बिना मुंह धोए मंजन किए ऐसे ही जूते पहते पहने हुए पूरा वो जो पीटी का किट है वो पहना हुआ है और ऐसे ही सीधे। परंतु यदि नहीं गए तब फिर जो पनिशमेंट उसके लिए मिलेगा वो इतना भयावह होता था, तो सब डर के मारे डॉट ऑन टाइम। तो कितना डिसिप्लिन, कई बार मैंने देखा कई बच्चे कई स्टूडेंट्स आजकल बंबई शहर इत्यादि उनके ट्यूशंस और स्कूल चालू हो जाता है सुबह 6 बजे से, 6 बजे से ट्यूशंस चालू हैं, परंतु मंगल आरती के लिए बुलाओ क्यों, क्योंकि ट्यूशन से मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स से डिग्री मिलेगी, डिग्री से नौकरी मिलेगी, नौकरी से क्या मिलेगा, पैसा, आपकी मंगल आरती में क्या मिलने वाला है। तो ले देके बात वहीं आ जाती कि भाई यहां पर तो पैसा मिलेगा एंड में, आपके वहां तो क्या एक द्रोण रबड़ी मिलेगी, वो तो मैं 9 बजे भी आऊं तो मिल जाएगी। और कुछ पुजारियों को मैं जानता हूं तो अंदर से भी मिल जाएगी। सो द पॉइंट इज हाउ मच वी आर पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड व्हेन इट कम्स टू अवर ओन सेल्फ एंड हाउ मच पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन डू वी शो टू प्लीज कृष्णा। दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, हाउ मच वी ओवरलुक अवर ओन फॉल्ट्स। हमारी खुद की गलतियां हम कितना दुर्लक्ष कर देते हैं और एकदम खुद के लिए अकोमोडेटिंग हो जाते हैं, खुद के लिए एकदम ब्रॉड हार्टेड हो जाते हैं कि अरे मैंने ही की है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु कोई दूसरा थोड़ी सी गलती कर दे तो उसका तो कोर्ट मार्शल मैं ही करूंगा। या फिर भक्ति में हम कोई गलती देखें, या कई बार कई नए आते हैं भक्त मंदिर में आते हैं तो मंदिर में देखा कि अरे हमको तो कूपन मांगा गया प्रसाद के लिए, क्या है ये, अरे भाई मुफ्त में खिला रहे हैं, उसके ऊपर तुम शमशेर छेर बन के छड़े हुए हो कि कूपन क्यों मांगा। या ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, कितनी सारे वो गलतियां निकालना शुरू करते हैं। और जब पूछा जाए कि भाई आप कितने दूध के धोए हुए हो, तब फिर बोलती बंद हो जाती है। तो वैसे ही जब हम भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो हमारी कितनी सारी गलतियां हम अपने आप को माफ करते रहते हैं। We keep forgiving ourselves, but someone else, we become like a tyrant, unforgivable offenses. इसलिए जब श्रील प्रभुपाद को पूछा गया कि स्वामी जी आपके शिष्य तो आपके लेक्चर में सोते रहते हैं, प्रभुपाद ने, हालांकि कुछ हद तक वो बात सच थी, परंतु प्रभुपाद ने उस पर गौर नहीं किया इतना। प्रभुपाद ने कहा वो कम से कम 5% तो जगे रहते हैं, तुम तो आते ही नहीं, तुम तो 100% लंबा सोए हो अपने घर में, कम से कम वो भागवतम क्लास में तो सो रहे हैं, मंदिर के अंदर आके तो सो रहे हैं, तुम तो आते ही नहीं। प्रभुपाद ने कहा सो हाउ मच वी ओवरलुक अवर ओन फॉल्ट्स। जैसे पराशर भट्ट, श्री वैष्णव संप्रदाय में पराशर भट्ट इनकी कथा है कि पराशर भट्ट एक अलवर हुए और वो इतने शुद्ध भक्त और इतने प्रख्यात हो गए थे कि पूरा श्रीरंगम उनकी आराधना करने लगा और उनको सबसे ऊंचा भक्त मानने लगा। तो एक व्यक्ति जो उनसे द्वेष करता, तो ये व्यक्ति श्रीरंगम का ही रहने वाला, जब भी पराशर भट्ट भगवान रंगनाथ जी के सामने आते रोज दर्शन लेने के लिए, तो ये आकर रंगनाथ जी को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहता, आ गया ये आपका गिरा हुआ भक्त, पापी, ऐसे सब गालियां देता पराशर भट्ट को। तो पराशर भट्ट जब ये सब गालियां सुने तो उन्होंने रंगनाथ जी से एक दिन कहा कि देखो मैं रोज आकर मैं अपनी व्यथा व्यक्त करता हूं, आप शायद विश्वास नहीं करते, ये साक्षी है, देखो ये आके साक्षी बना है, इसको मैं लेकर आया हूं कि अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते कि मैं कितना गिरा हुआ हूं, कम से कम इसकी बात पर तो विश्वास कीजिए। और यही पराशर भट्ट इस व्यक्ति को रोज अपने घर पे प्रसाद खिलाते, तो सभी बाकी जो श्रीरंगम के रहवासी वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये व्यक्ति आपकी निंदा करता है रोज, इसको आप रोज घर में बुला के प्रसाद खिला रहे हो। तो पराशर भट्ट ने कहा कि देखो, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को दो आदेश दिए थे। पहला आदेश उन्होंने मुझे दिया कि तुम पूरे दिन भर भगवान रंगनाथ जी का गुणगान करते रहो, और दूसरा आदेश भगवान रंगनाथ जी का गुणगान करने के साथ साथ खुद की कमियां ढूंढते रहो, खुद के अंदर खामियां ढूंढते रहो और रंगनाथ जी का गुणगान करो, बस ये दो चीज अपने जीवन में करो। तो पराशर भट्ट को जब ये पूछा गया कि तुम ये जो तुम्हारा निंदक है इसको तुम क्यों खिलाते हो रोज, तो बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया कि मेरे गुरु महाराज के जो दो आदेश उन्होंने दिए, जय श्री राधा मदन गोपाल जी की, उसमें से जो पहला आदेश कि रंगनाथ जी का गुणगान करना, मेरा पूरा दिन उसी में चला जाता है कि मैं मेरे गुरु महाराज के दूसरे आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूं। माय होल डे गोज इन ग्लोरीफाइंग रंगनाथ, सो द अदर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय माय गुरु महाराज टू फाइंड माय ओन फॉल्ट्स, ही इज डूइंग दैट फॉर मी। कि वो सहायता कर रहा है मेरे गुरु महाराज के दूसरे आदेश का पालन करने में, तो इसलिए मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं। जैसे पूतना उद्धार में हम देखें, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना जो कि कुत्सित हृदय से आई थी भगवान को मारने के लिए, और भगवान छोटे से, एक तो भगवान वो भी शिशु के रूप में, सोचिए कितने सुंदर भगवान दिख रहे थे, और वो भी केवल 6 दिन के थे भगवान, और ये पूतना ऐसे सुंदर भगवान को मारने के लिए आई, वो भी मां का रूप लेकर, तो कितना इसका हृदय कलुषित था। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि ये बाहर से लक्ष्मी जैसी दिख रही थी परंतु इसका हृदय एक तेज धार वाली तलवार के समान था। तो बाहर से मयान इस तलवार की बहुत मखमली थी, परंतु अंदर से जो तलवार वो इतनी तेज धार वाली थी कि कोई यदि स्पर्श भी कर ले तो उसका हाथ कट जाए। ये थी पूतना, दोषों से भरी हुई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने वो सब को दुर्लक्ष करते हुए ये देखा कि ये मुझे दूध पिलाने आई है। कृष्ण ओवरलुक्ड ऑल द फॉल्ट्स ऑफ पूतना एंड फोकस्ड ऑन वन क्वालिटी ऑफ पूतना, दैट शी हैज कम टू फीड मी मिल्क। एंड पूतना ओवरलुक्ड ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ कृष्णा एंड फोकस्ड ऑन किलिंग कृष्णा। वाई? बिकॉज ही इज अ थ्रेट टू कंसा। तो पूतना के उदाहरण से यहां पर हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमको क्या सिखा रहे हैं, कि यदि कृष्ण भगवान जिनको मारने के लिए पूतना आई, और भगवान ने सब कुछ दुर्लक्ष करते हुए उसके एक गुण को देखा। जैसे रामचंद्र जी के जीवन की कथा है कि एक बार रामचंद्र जी उनके चरणों को माता सीता, वो उनको पाद विन्यास कर रही थी, मालिश कर रही थी, तो रामचंद्र जी के चरणों में सीता मैया ने देखा एक कांटा। तो माता सीता वो कांटे को निकालने के लिए, अरे कांटा रामचंद्र जी के चरणों में अटका हुआ है, तो निकालने के लिए वो प्रयास करने लगी, तो भगवान ने कहा मत निकालो उसे। तो सीता मैया ने कहा, अरे आपके चरणों में कांटा आपको चुभेगा, तकलीफ देगा। रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, वो कांटा है, वो अपना काम करेगा। उसका काम क्या है? चुभाना। कांटे का काम क्या है? चुभाना। तो यदि कांटा वो अपना काम नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना काम क्यों छोड़ूं? और मेरा काम क्या है? उसको मेरे चरणों में शरण देना। कांटे का काम है चुभाना, वो तुच्छ कांटा वो अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ रहा तो मैं जो भगवान हूं मैं अपने स्वधर्म को क्यों छोड़ूं? और मेरा स्वधर्म क्या है? कि जिसने भी मेरे चरणों में शरण ग्रहण की है मैं उसे नहीं जाने देता। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। तो प्रभु श्री राम ने वो नहीं देखा कि ये कांटे के अंदर कितने दुर्गुण हैं। क्या देखा उन्होंने? एक गुण देखा कि इसने मेरे चरणों की शरण ली है। इसलिए ये सब उदाहरणों से, प्रभु श्री रामचंद्र जी के उदाहरण से, भगवान कृष्ण के उदाहरण से, पूतना उद्धार के उदाहरण से हमें क्या सीखना है? कि जैसे हम अपनी गलतियों को माफ करते रहते हैं, वैसे जब हमारे साथ कोई दूसरे भक्त या किसी और की गलती हो तो क्या हम भगवान श्री कृष्ण की तरह उदार हृदय रखते हैं? क्या हम रामचंद्र जी की तरह उदार हृदय रखते हैं? ये सातवां मुद्दा। आठवां मुद्दा, हाउ मच केयरफुल वी आर टू प्रोटेक्ट अवर ओन इमेज। हमारे इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कितने जद्दोजहद करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं कि विशेष रूप से दूसरे भक्तों के सामने मेरी इमेज खराब ना हो। तो प्रश्न ये है, हाउ मच आर वी प्रोटेक्टिंग द इमेज ऑफ कृष्णा एंड प्रभुपाद जस्ट लाइक वी प्रोटेक्ट अवर ओन इमेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जैसे कई बार हम मंदिर में आते हैं कार्यक्रमों में, तो हमारे मंदिर में आने के बहुत से उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य हमारा होना क्या चाहिए? कि हम भक्ति में प्रगति करने के लिए आए, हम भगवान राधा मदन गोपाल को प्रसन्नता सेवा करने के लिए आए। परंतु कई बार हमारे मंदिर में आने का अटेंडेंस मार्क करने आते हैं। क्यों? क्योंकि यदि मैं अपना अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा तो दूसरों के नजरों में मेरी इमेज खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं अपना अटेंडेंस मार्क कर लूं और मैं जब आऊं तो मैं सबको जाके मिल लूं, देख लिया मैं आ गया, तिलक भी लगाया, धोती पहन के आया हूं, देख लो, कभी बोलना मत मैं आया नहीं सुबह, बोलना मत मैं संडे के क्लास में नहीं था, था मैं आपके बगल में बैठा था, आप सो रहे थे वैसे। तो कई बार हमारा कॉन्शियसनेस क्या रहता है कि अटेंडेंस के लिए। तो ये कॉन्शियसनेस क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें हम अपने आप पर ही फोकस कर रहे हैं। फिर से यदि श्रवण कीर्तन भी करने आए हैं परंतु फोकस अपने ऊपर ही है, मेरी इमेज बनी रहे। जैसे मान लो कि आप किसी की शादी में गए हो, होता ना रिसेप्शन, रिसेप्शन में वो वर वधू ऊपर खड़े रहते हैं और सब लोग जा जाके मिलते हैं। तो आप किसी के रिसेप्शन में गए हो और रिसेप्शन में खाना पीना सब कुछ चल रहा है, बहुत से और भी आए हैं। जैसे अक्सर लोग रिसेप्शन में इतना सज धज के जाते हैं तो बेचारे वर वधू सोचते हैं शादी किसकी है। तो मान लो कि आप किसी के रिसेप्शन में गए हो और वो जो बेचारे ऊपर खड़े हैं जिनकी शादी हुई है उनसे तो आप मिले ही नहीं, और बस बाकी जितने जनता आई है वो सारी मैं आ गया, अच्छा आप कैसे हैं, देखा नया सूट लिया है, नई साड़ी है, नया सूट है। तो उनसे मिले बिना हम पूरा अपना सोशलाइजिंग कर चले गए, कैसा लगेगा, उनसे मिले ही नहीं जिनकी शादी और अपना सोशलाइजिंग कर चले गए। तो उसी प्रकार से हम मंदिर आते हैं और यहां पर किसका रिसेप्शन चल रहा है, राधा मदन गोपाल जी जो ऊपर खड़े हैं। और अक्सर होता क्या है, हम उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते और हम बाकी में इतने मशरूफ रहते हैं, मैं आ गया देखा कि नहीं, हाँ अरे इधर देखो उधर क्या, वो तो खड़े हैं, वो तो हर समय उधर ही खड़े रहते हैं। तो ये उसी के समान है, हम हमारा सोशलाइजिंग करके चले जाते हैं, भगवान की तरफ देखते नहीं कि जो एक्चुअल कपल जिनका फंक्शन रोज चल रहा है, इनके वजह से सब फंक्शन चल रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स वी आर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ मी रादर देन व्हाट राधा मदन गोपाल इज थिंकिंग अबाउट मी। क्या क्वेश्चन होना चाहिए, नॉट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट मी बट व्हाट कृष्णा इज थिंकिंग अबाउट मी। जैसे रामायण में बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है भरत जी का, कि लक्ष्मण जो थे वो रामचंद्र जी के साथ 14 साल रहे और रामचंद्र जी का संग उनको मिला, सेवा मिली, उनके उनका गुणगान हुआ क्योंकि वो भी रामचंद्र जी के समान एक वनवासी का जीवन जिए 14 साल, तो लक्ष्मण का गुणगान हुआ। परंतु भरत, देखिए उनकी स्थिति ऐसी थी, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, गलती की किसने, कैकेयी ने गलती की, उनकी यदि कहने को जाओ तो केवल एक ही गलती थी कि वो कैकेयी के पुत्र थे। भरत किसके पुत्र थे, कैकेयी के। तो जो लांछन भरत को 14 साल सुनने मिला, एक दिन नहीं दो दिन नहीं, जो आरोप, जो लांछन एलिगेशंस भरत के ऊपर डाले गए सारे अयोध्या वासी ने कि तेरे वजह से 14 साल वनवास मिला है, ऐसे ऐसे अपशब्द भरत को कहते अयोध्या वासी कि इस मनहूस के वजह से हमारे रामचंद्र जी चले गए, ये और इसकी मां। सोचो ऐसे माहौल में आपको रहना है। कई बार भक्तों के बीच में हमारी अगर इमेज खराब हो जाए तो फिर हम इतना दूर चले जाते हैं भक्तों से कि यमराज यमदूत भी ढूंढ नहीं सकते हमको कहां, क्यों, क्योंकि मेरी इमेज खराब हो गई है भक्तों के संप्रदाय में या समुदाय में, मेरी इमेज खराब हो गई। हाउ मच वी आर सो केयरफुल अबाउट दैट सिली 2 पैसा इमेज ऑफ आर्स, क्या है 2 कौड़ी की इमेज है हमारी, है क्या उसके अंदर, हमारी इमेज के अंदर जो हम इतना उसको सिंहासन पर बिठाकर आरती करते हैं, लेकिन मेरी इमेज खराब हो गई, मैं अब कैसे चेहरा दिखाऊं। यहां देखो भरत, रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे बिहाफ पर तुम्हें राज्य करना है, अयोध्या का राज्य संभालना है, तो रामचंद्र जी का जो आदेश था उसका पालन करने के लिए भरत अपने ऊपर सारी पूरी अयोध्या नगरी की जो गाली गलौच है वो अपने ऊपर लिया उन्होंने। इसे कहते हैं सरेंडर्ड डिवोटी। इसलिए कई टीकाकार श्री वैष्णव संप्रदाय के वो भरत और शत्रुघ्न का जो त्याग है उसे लक्ष्मण से ज्यादा, लक्ष्मण और सीता के त्याग से ज्यादा ऊंचा माना है उन्होंने, बिकॉज दे सर्व्ड लॉर्ड राम एंड राम्स इंस्ट्रक्शन इन सेपरेशन। सीता एंड लक्ष्मण सर्व्ड लॉर्ड राम इन यूनियन, But Bharat and Shatrughna served Lord Ram in separation. And especially Bharat, he served Lord Ram amidst all criticisms. तो ये सुंदर उदाहरण भरत का है. क्यों? क्योंकि मुझे रामचंद्र जी की इमेज वो मेंटेन रखनी है. आई केयर लेस अबाउट माई इमेज, भरत सेड. नो मैटर हाउ मच पीपल क्रिटिसाइज मी, ब्लैस्फेम मी, आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट सर्विंग लॉर्ड राम, इवन इफ आई एम क्रिटिसाइज्ड. बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में. ये श्लोक ऐसा श्लोक है कि जो एक शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार में एक शुद्ध भक्त की संपूर्ण परिभाषा देता है ये श्लोक. और यदि इस श्लोक का अनुमोदन हम कर सकें, यदि इस श्लोक को हम अपने जीवन में उतार सकें, तो हमारे लिए गोलोक वृंदावन यहीं पर मौजूद हो सकता है. ध्यान से सुनिए यह प्रथम स्कंद का श्लोक, जहां पर जब परीक्षित महाराज को शाप दिया गया, श्रृंगी ने, शमक ऋषि का जो पुत्र श्रृंगी, इस ब्राह्मण पुत्र ने जब परीक्षित महाराज को श्राप दिया, तो परीक्षित महाराज जो कि पांडवों के वंशज, परीक्षित महाराज जो कि पूरी पृथ्वी के सम्राट राजा, एक छोटे से नादान बालक के द्वारा शापित होने के पश्चात उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, इस श्लोक के द्वारा बताया गया. तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि न यस्य प्रतिकूर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि. बहुत ही सुंदर श्लोक है. इस श्लोक में कहा गया है तद्भक्ता प्रभवोपि, कि वो भक्त प्रभावशाली है, वो भक्त भगवान का असली भक्त है. कौन? कौन सा भक्त? वो भक्त जब तिरस्कृत होता है, वो भक्त जब उसके साथ धोखा किया जाता है, विप्रलब्धा, वो भक्त शप्ता जब उसको शापित किया जाता है, क्षिप्ता वो भक्त जब उसको दुर्लक्ष किया जाता है, हतापि वो भक्त जब जिसको मारा जाता है जान से, इसके पश्चात न यस्य प्रतिकूर्वंती, जो प्रतिकार नहीं करता, इन सब के बावजूद तद्भक्ता प्रभवोपि ही, वो है भगवान का खरा भक्त, वो है भगवान का असली भक्त. इवन इफ ही इज डिफेम्ड, even if he is cheated, even if he is cursed, even if he is neglected or killed, that devotee who doesn't retaliate, who doesn't avenge, he is the true devotee of the Lord. Tiraskrita vipralabdha shapta kshipta hata api nayasya pratikurvanti tadbhakta prabhavopihi. He is a true devotee. He is devotee of substance. तो हम एक एक उदाहरण यदि ये श्लोक में जो गुण बताए गए हैं, एक एक उदाहरण यदि हम लें, तो हम समझ पाएंगे कि इस श्लोक के द्वारा हमें क्या बताया जा रहा है. तिरस्कृता, सबसे पहला शब्द है इस श्लोक का, तिरस्कृता. तिरस्कृत हुआ कोई भक्त, डिफेम्ड, उसका तिरस्कार हुआ. और उदाहरण है श्रीवास ठाकुर का चैतन्य चरितामृत से. श्रीवास ठाकुर जो कि पंच तत्व के एक तत्व, श्रीवास ठाकुर जो कि स्वयं साक्षात नारद मुनि, और उनके आंगन में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे। श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने चुना कि यदि मुझे कोई जगह चाहिए कीर्तन के लिए तो श्रीवास ठाकुर का आंगन। तो श्रीवास आंगन में स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षदों के साथ दिन रात कीर्तन किया करते, और जो द्वेषी नवद्वीप के जो श्रीवास ठाकुर से द्वेष किया करते, उन्होंने श्रीवास ठाकुर के घर के सामने एक दिन सारी ये तांत्रिक सामग्रियां रख दी, तांत्रिक पूजा की, और पूरे नवद्वीप को में घोषणा कर दी कि ये जो श्रीवास ठाकुर है ये अपने घर में दरवाजे बंद कर कर गलत काम करता है, देखो ये सारी सामग्रियां। और जब श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन संकीर्तन के पश्चात जब दरवाजा खोला, उन्होंने देखा ये सब तांत्रिक सामग्रियां, खून हड्डियां मांस वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो खुद गए पूरे नवद्वीप में और नवद्वीप वासियों को बुलाया और जाकर सारे नवद्वीप वासियों को बुलाकर दिखाया कि यदि आपको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, यदि आपको ये लग रहा है कि मेरे आंगन में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं, नहीं, ये मेरी असलियत है। न यस्य प्रतिकूर्वन्ति, उन्होंने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। इसलिए एक बहुत सुंदर कोट है अंग्रेजी भाषा में, स्पेशली फॉर डिवोटीज, डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ। डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, रैदर ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ। न यस्य प्रतिकूर्वन्ति, श्रीवास ठाकुर ने कोई लॉयर नहीं बुलाया कि प्रूव करो कि मैं प्रगत भक्त हूं, मैं पार्षद हूं, मैं एक पंचतत्व हूं और ये सब मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र रचा गया है। ही डिडंट ट्राई टू प्रूव हिमसेल्फ। तो तिरस्कृता, तिरस्कृता का उदाहरण श्रीवास ठाकुर। श्लोक में अगला शब्द है विप्रलब्धा। विप्रलब्धा इसका अर्थ है जब किसी के साथ धोखा होता है, when one is cheated, उसको कहते हैं विप्रलब्धा। तो विप्रलब्धा में उदाहरण है युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडव। युधिष्ठिर महाराज के साथ दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, ये सब इन लोगों ने मिलकर बचपन से धोखाधड़ी की, सब कुछ हर लिया, यहां तक कि द्रौपदी का ऐसा तिरस्कार किया, पूरा राज्य हड़प लिया और षड्यंत्र कर 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 युधिष्ठिर महाराज जो कि धर्मराज, उनको नंगा कर कर भेज दिया, उनके वस्त्र भी छीन लिए और उनको 13 वर्ष का वनवास। और उस 13 वर्ष के वनवास में दुर्योधन, जब अज्ञातवास चल रहा था तो दुर्योधन ढूंढते हुए कि मैं पता लगा लूं कि ये लोग कहां पर हैं ताकि और 12 साल बढ़ जाए इनका वनवास, तो दुर्योधन को कुछ गंधर्व पकड़ लिए, गलत जगह पर चला गया था। और उस समय युधिष्ठिर महाराज जिनके साथ विप्रलब्ध इतना सब कुछ धोखाधड़ी इस दुर्योधन ने की, युधिष्ठिर महाराज ने भीम अर्जुन को भेजा कि उसकी सहायता करो, और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जब कोई दूसरा हमारे ऊपर प्रहार करता है तो हम 105 हैं, 100 धृतराष्ट्र के पुत्र और हम 5 पांडु के पुत्र। अर्जुन, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन के सामने ये सारे धोखेबाज खड़े हुए हैं, ये दुशासन, ये दुर्योधन इत्यादि, और अर्जुन इन धोखेबाजों को देखते हुए अर्जुन रो रहे हैं, उनका शरीर कंपन कर रहा है और वो उनके विषय में चिंता कर रहे हैं जिन्होंने धोखा दिया पूरे जीवन भर अर्जुन को और पांडवों को। न यस्य प्रतिकूर्वंती, तो ये उदाहरण है युधिष्ठिर और पांडवों का, अर्जुन का, कि इतना धोखा उनके साथ हुआ परंतु फिर भी वो धृतराष्ट्र को युद्ध जीतने के बाद, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को अपने ही राज्य में महल में रखकर अपने पिता के समान उनकी सेवा करते थे। और ये तो विदुर थे, विदुर आकर धृतराष्ट्र को बोले कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जिन पांडवों को मारने के लिए बचपन से तुमने षड्यंत्र रचे, जिस भीम को मारने के लिए तुमने दुर्योधन को पैदा किया, और इनको मारने के लिए तुमने वो जो युद्ध का प्रोत्साहन किया, वो सब हारने के पश्चात तुम्हें शर्म नहीं आती कि भीम के फेंके हुए टुकड़े खा रहे हो तुम यहां पर? अरे कैसे क्षत्रिय हो तुम, लानत है तुम पर। तो धृतराष्ट्र ये सब सुनने के पश्चात फिर उसकी अंधी आंखें खुली, तो ये उदाहरण विप्रलब्धा, तिरस्कृता विप्रलब्धा। अगला शब्द इस श्लोक में है शप्ता, और उदाहरण है परीक्षित महाराज, जिनके विषय में श्लोक कहा गया कि परीक्षित महाराज को एक नादान बालक ने शाप दिया, जिसकी कोई औकात नहीं थी उस राज्य में, परीक्षित महाराज जैसे महाजन को इसने शाप दिया कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होनी चाहिए। न यस्य प्रतिकूर्वंती, परीक्षित महाराज जिनके अंदर सारी क्षमता थी प्रतिकार करने की, काउंटर कर्स करने की, नहीं, उन्होंने श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण की। फिर अगला शब्द है क्षिप्ता। क्षिप्ता संस्कृत का यह शब्द है जिसका अर्थ है दुर्लक्ष। जब हमको कोई निग्लेक्ट करता है, बहुत दर्द होता है हमारे हृदय में जब कोई हमको दुर्लक्ष करता है। तो राधा रानी कहती हैं, जो अंतिम श्लोक है शिक्षाष्टकम का, वो राधा रानी का उद्गार है, और वो क्या है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतिवा। राधा रानी कहती हैं कि हे मेरे प्राणेश्वर, हे कृष्ण, यदि आप अपने चरणों के नीचे मुझे रौंद दो, यदि आप ठुकरा दो मुझे, या यदि आप प्रेम से मुझे आलिंगन करो, इसके बावजूद यदि आप मुझे दुर्लक्ष कर मेरी ओर ध्यान भी ना दो, देखो भी ना, फिर भी प्राणनाथस्तु सहेवना, कि आप मेरे प्राणनाथ बने ही रहोगे इन एवरी केस, वेदर यू किक मी, वेदर यू एम्ब्रेस मी, वेदर यू निग्लेक्ट मी, यू विल बी माय लॉर्ड एंड मास्टर। तो ये राधा रानी का उदाहरण है क्षिप्ता में। मुकुंद दत्त का भी उदाहरण है, जब चैतन्य महाप्रभु सबको अपना दर्शन, अपनी कृपा दे रहे थे मुकुंद दत्त के अलावा, तो बाकी सारे भक्त गए कि भगवान आप इसको क्यों निग्लेक्ट कर रहे हो, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, मैं उसे 10 मिलियन लाइफ टाइम्स के पश्चात अपना दर्शन दूंगा, 1 करोड़ लाइफ टाइम के बाद मैं अपना दर्शन दूंगा। सोचो इतना बड़ा निग्लेक्ट। कई बार एक संडे प्रोग्राम में कोई अगर भक्त हमको हरे कृष्णा नहीं करता तो हमको लगता है निग्लेक्ट कर रहा है मेरे को, मैं नहीं आऊंगा मंदिर, मुझे निग्लेक्ट किया जा रहा है, मुझे देख के उसने स्माइल नहीं किया, मुझे देखा लेकिन मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला, मुझे दंडवत नहीं किया, मुझे प्रभु नहीं बोला। यहां पर यदि कोई हमें 1 करोड़ जन्मों तक स्माइल नहीं करे और वो भी सबको बोले कि मैं नहीं करूंगा तुमको स्माइल, अनाउंस करे पब्लिकली, चैतन्य महाप्रभु ने पब्लिकली अनाउंस किया 1 करोड़ जन्म तक मैं नहीं दिखूंगा उसका, पब्लिकली अनाउंस किया, रिकॉर्डेड है चैतन्य चरितामृत में। तो सोचो कि हमारे साथ जब कोई दुर्लक्षता दिखाता है तो हम लोग कितना तिलमिला जाते हैं, मुझे निग्लेक्ट किया, ऐसी हिम्मत। तो मुकुंद दत्त जब उनको ये बताया गया कि अरे सब लोग थोड़ा मायूस होकर गए मुकुंद दत्त के पास, इतना लंबा चौड़ा निग्लेक्टफुल पीरियड रखा है चैतन्य महाप्रभु ने, तो मायूस होकर इन्फॉर्म करने गए कि हमने तो प्रयास किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले कि 10 मिलियन लाइफ टाइम्स, 1 करोड़ जन्म के बाद वो शायद अपना दर्शन देंगे। तो मुकुंद दत्त उछल पड़े और भाव विभोर होकर वो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने लगे और चिल्लाने लगे कि आई विल सी, मैं देखूंगा। कम से कम 1 करोड़ जन्मों के बाद तो मैं दर्शन लूंगा उनका, ये था उनका कॉन्शियसनेस। तो मान लो कि यदि कोई भक्त हमको आके कहे कि मैं 1 करोड़ जन्म के बाद स्माइल करूंगा, तो क्या हम इस प्रकार से भाव विभोर होकर उछल पड़ते हैं, यस ही विल स्माइल। हम तो बोले भाड़ में जा तू और तेरी स्माइल, नहीं चाहिए हम 1 करोड़ जन्म, पता नहीं मैं कहां रहूंगा तू कहां रहेगा। तो मुकुंद दत्त का कॉन्शियसनेस देखिए कि उस समय भी 1 करोड़ जन्म के बाद भगवान ने कहा कि मैं दर्शन दूंगा, तो उनका फोकस किस पे था कि दर्शन मिलेगा, उनका फोकस वो 1 करोड़ जन्म के ऊपर नहीं था, उनका फोकस था चैतन्य महाप्रभु ने कहा दर्शन दूंगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर अंतिम है हता अपि, कि जब भक्त को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा जाता है, और इसके उदाहरण है प्रह्लाद महाराज। 5 वर्षीय प्रह्लाद की सोचो कि 5 वर्षीय बालक चाहे कितनी मस्ती कर सकता हो, परंतु क्या कोई ऐसा दंड देता है, मृत्यु दंड। तो प्रह्लाद महाराज को मृत्यु दंड दिया और वो भी खुद के पिता ने। तो प्रह्लाद महाराज एक बार भी सजेशन बॉक्स में कंप्लेंट नहीं डाले, कि यही सिला दिया तूने मेरे प्यार का, मैंने इतनी भक्ति की, इतने लोगों को प्रचार किया, इतना कीर्तन किया, इतना श्रवण किया, गर्व से सुनते आ रहा हूं, और यहां पर मेरे को ही जान से मारने के लिए इन सबको भेज रहे हो। तो प्रह्लाद महाराज बिल्कुल कोई शिकायत नहीं, न यस्य प्रतिकूर्वंती, इसके विपरीत प्रह्लाद महाराज तो जितनी विपदाएं अलग अलग तरीके से, जब प्रह्लाद महाराज को मारा जा रहा था तो प्रह्लाद महाराज उसके अंदर भगवान को देख रहे थे, जब उनको विष पिलाया गया तो प्रह्लाद महाराज ने देखा कि अरे ये विष तो मेरा मामा है। कैसे? क्योंकि समुद्र मंथन में लक्ष्मी देवी जो प्रह्लाद महाराज की माता है वो उत्पन्न हुई, और उसी समुद्र मंथन से ये जहर उत्पन्न हुआ, तो एक ही जगह से भाई बहन उत्पन्न हुए। तो यदि लक्ष्मी देवी इनकी माता हुई तो जहर लक्ष्मी देवी का भाई हुआ और प्रहलाद महाराज का मामा हुआ। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये जहर तो मेरा सगा है, ये कैसे मुझे मारेगा। जब हाथियों के नीचे प्रहलाद महाराज को रौंदने की कोशिश की गई तो प्रहलाद महाराज ने उन हाथियों में गजेंद्र को देखा कि जिस गजेंद्र को मेरे भगवान ने मुक्त किया था वो गजेंद्र मुझे कैसे मारेगा। जब सर्पों के बीच में फेंका गया प्रहलाद को तो उन सर्पों में प्रहलाद महाराज ने अनंत शेष को देखा। तो ये सारी जो अलग अलग मृत्यु उनको देने की प्रक्रिया हो रही थी उसमें प्रहलाद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को देखा। प्रहलाद सॉ द कृष्णा एलिमेंट न यस्य प्रतिकूर्वंती, प्रतिकूर्वंती तो छोड़ दीजिए, दिस इज कॉल्ड अ ट्रू डिवोटी। इसलिए यह श्लोक हमने अंत में रखा सुनाने के लिए कि ये श्लोक हमारे जीवन का चरम श्लोक बनना चाहिए। यदि हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनना है और विशेष रूप से कलयुग में और विशेष रूप से भक्तों के समुदाय में तो हमको ये श्लोक याद रखना है। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि न यस्य प्रतिकूर्वन्ति तद्भक्त प्रभवोपि। तो ये मुद्दा था, हाउ मच आर वी ईगर टू प्रोटेक्ट अवर इमेज। भक्तिविनोद ठाकुर इज आस्किंग, आर वी सिमिलरली ईगर टू प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ श्रील प्रभुपाद मिशन, आर वी सिमिलरली ईगर टू प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ अदर डिवोटीज। इफ येस देन येस दिस पर्टिकुलर कपलेट विच सेज विषये जे प्रीति एबे आचाय अमार से मत प्रीति होक चरण तोमार। कि जितनी प्रीति जितना प्रेम जितनी भक्ति जितनी आराधना मैं खुद की करता हूं, मैं यदि उतनी भगवान की करने लग जाऊं तो अवश्य ही भगवान के चरण कमलों में मुझे आश्रय प्रदान भगवान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चार और मुद्दे बाकी हैं, कितने हो गए अब तक, आठ मुद्दे हो गए कि आठ तरीके से हम हमारी आराधना करते हैं। तो चार मुद्दे और बाकी हैं, तो हमारी अगली सिटिंग में हम जो आखिरी चार मुद्दे हैं वो लेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, एनी क्वेश्चंस?
प्रभु हरे कृष्ण।
हरि बोल।
मुकुंद दत्त का अपराध क्या था जो उसको 10 मिलियन वर्ष भगवान स्माइल नहीं करने वाले थे?
मुकुंद दत्त एक ऐसे भक्त थे भगवान के कि जब कोई अभक्त भी मुकुंद दत्त को कुछ कहता, या मायावादी, उस समय मायावादी भी यदि मुकुंद दत्त को कुछ कहते तो मुकुंद दत्त उसको अपमानित न करके केवल सुनते रहते। तो चैतन्य महाप्रभु को ये पसंद नहीं था, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये मायावादियों के पास भी उतने ही उत्साह से जाता है जितने उत्साह से ये भक्तों के साथ रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया कि ये उसके समान है कि ये मेरे चरणों की मालिश करता है एक हाथ से और दूसरे हाथ से मेरे सर पर हथौड़ा मारता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु ने दिया दैट इफ समबडी is associating with Mayavadis also with heart and soul and also with devotees, then he is doing that with Chaitanya Mahaprabhu. To wo Chaitanya Mahaprabhu ke anusar unka aparadh. Jai Granthraj Srimad Bhagavatam ki jai.
इसलिए शिक्षा अष्टकम प्रभु की
अनंत।